वसीला शरण बिल्कुल जायज़ है। असल में जिस वजह से इन मजमून निगार को मगालता लाहक हुआ है वो ये है कि वो ये समझते हैं कि अल्लाह सुबहान व तआला को छोड़कर किसी से दरख्वास्त की जा रही है। जो उन्होंने फर्जी कहानी बना के बात करने की कोशिश की वो बिल्कुल भोंडी है, उसका कोई ताल्लुक इससे नहीं है। ये अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ की जा रही है कि ए अल्लाह आप इनसे इनका लिहाज कर लीजिए, हम इस काबिल नहीं है कि हमारी बात सुनी जाए। है तो हम इस काबिल कि हमारी भी सुनी जाए, इस काबिल होने की वजह से मसला नहीं है। मसला यह है कि हमें उम्मीद है कि हम इसके मुस्तहिक नहीं है, हम इतने गुनाहगार और खराब है, ये आपकी ज्यादा चहीते हैं। आप अल्लाह सुबहान व तआला से यही तो करते हैं। रब बना का क्या मतलब होता है? ए मेरे प्यारे अल्लाह, तो आप खाली अल्लाह क्यों नहीं कहते? अल्लाह के साथ या अल्लाह अल्लाहुम्मा, पूरा कुरान इसी तरह की दुआओं से माशाल्लाह ममलू है, भरा है, बहुत सी दुआएं सब में रब रब रब। ये अल्लाह के नाम से आप वसीले ही तो करते हैं। या अल्लाह तेरे प्यारे नाम, तू करीम है, या अल्लाह अपनी कर्म का मामला फरमा दे, या अल्लाह तू रहीम है अपना कर्म का मामला फरमा, मैं गुनाहगार हूं मुझे माफ फरमा दे। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुवुन, अल्लाह आप अफ़ू हैं माफ फरमाने वाले हैं, इसका ख्याल करके मुझे माफ फरमा दे। ये वसीले ही तो है और ये जायज है सबके नजदीक। फिर बनी इसराइल का वो वाकया जो बुखारी शरीफ में मुस्लिम शरीफ में आया है, अपने आमाल को वसीला बना के कहते हैं कि या अल्लाह मेरा ये अमल अगर आपको पसंद आया, नेक था, अच्छा था, आपकी रजा के लिए किया गया था, तो मेरे इस अजाब को, मुश्किल को दूर कर दीजिए। जो गार में फंस गए थे तीन अहबाब, उनकी तफसील आप सुन चुके हैं मेरे बयान में। तो वहां आप क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं, या अल्लाह हमारे इस अमल को, इस नेक अमल को अगर आपके यहाँ काबिल कबूल है तो उसको जरिया बना के मेरी ये मुश्किल दूर कर दीजिए, मेरी ये आसानी कर दीजिए, मुझे मगफिरत फरमा दीजिए, जो भी है। इसी तरह जब आप किसी से कहते हैं कि अब्बू जान मेरे लिए दुआ कर दीजिए, क्या करते हैं? उसमें ये वसीला ही तो है कि अब्बा जान मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दुआ भी कबूल होती है यकीनन, इसलिए कि मैं इतना गुनाहगार हूँ, अगर आपने दुआ कर दी, चचा आपने दुआ कर दी, मामू आपने दुआ कर दी, ये बुजुर्ग आपने दुआ कर दी, ये इमाम आपने दुआ कर दी, मस्जिद के इमाम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर फारूक को जब उम्र में जा रहे तो कहा कि मेरे अपने भाई को दुआ में याद रखना। ये एक जरिया है अल्लाह सुबहान व तआला से दुआ को कबूल कराने में अपनी आजिज़ी जाहिर करने के लिए। बस ये फर्ज नहीं है लेकिन ऐसा करना जायज है, बस इतनी ही बात है। बल्कि बाद आइमा इमाम अहमद के यहाँ ये मुस्तहब है। तीसरी बात, अब ये दुआ जो आप जिंदों से करवाते हैं, नेक लोगों से करवाते हैं, ये अल्लाह के महबूब है इस वजह से करवाते हैं, आपका गुमान है, होंगे तो अल्लाह ही जानता है। अंबिया के बारे में तो आप यकीन से कह सकते हैं, सहाबा के बारे में तो आप यकीन से कह सकते हैं, आम लोगों के बारे में, दीगर आइम्मा के बारे में, उनका मकाम जितना भी ऊंचा हो, हम यकीनी तौर पर ये नहीं कह सकते कि ये अल्लाह सुबहान व तआला के कितने मुकर्रम है। हमारा गुमान है कि लाखों से पूरी दुनिया से हम सबसे बहुत बेहतर है इंशाअल्लाह ताला, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये फैसला तो अल्लाह ही फरमाएंगे, हम फतवा नहीं लगा सकते इस बारे में, हुक्म नहीं लगा सकते, हुक्म तो अल्लाह लगाएंगे। लेकिन हमें जितना इस बात का यकीन है कि हम कितने हैं, कैसे हैं, खराब, उससे बहुत ज्यादा बढ़कर उनके बारे में यकीन है कि अल्लाह के वो नेक वली हैं, नेक बुजुर्ग हैं, अच्छा गुमान रखते हैं। गुन्नू बिल मुमिनीना खैरा, हर मुमिन से, हर मुसलमान से अच्छा गुमान रखा करो। तो ये तो और इस बात के मुस्तहिक है कि इनसे हमें और पूरी दुनिया को कितना फायदा पहुंचाए नेक लोगों से। तो यकीनन ये नेक लोग हैं। जब ये नेक लोग हैं और हमारा गुमान है कि अल्लाह के मुकर्रबीन में से है, अल्लाह के करीब किए हुए, अल्लाह के खास लोगों में से, खवास में से है, तो ये खवास जिंदा थे तब थे या अब हुए हैं? दोनों सूरतों में है ना, जब जिंदा थे जब भी अल्लाह के चहीते थे, अब दुनिया से चले गए तब भी अल्लाह के चहीते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ हो तब भी अल्लाह के चहीते, मेराज पे थे जब भी अल्लाह के चहीते, अब अल्लाह सुबहान व तआला के पास दुनिया से रुखसत होकर चले गए तब भी अल्लाह के चहीते। चहीता तो हमेशा चहीता ही रहता है, बल्कि उसकी चाहत में दुनिया से चले जाने के बाद बढ़ोतरी होती रहती है, बढ़ना होता रहता है। तो उनकी चाहत कुछ, यानी उनके नेक होने को, उनके मुकर्रब बारगाह होने को वसीला बनाया जा रहा है। जो वसीला जिंदा हो या ना जिंदा हो, हर हालत में मौजूद रहता है, वो कहला थोड़ी जाता है। जब ये चीज पहले से मुतय्यन है तो ये जो कहानी बनाई है उस कहानी के अंदर तो बिल्कुल ही अल्लाह माफ फरमाए, इसको कहते हैं हम कयास माल फारिक, मुख्तलिफ एप्पल एंड ऑरेंजेस को कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ तो आली है कि ये औरत जो कहानी में इन्होंने सुनाया है वो तो बाहर जाके किसी अजनबी से, जो हराम है उसके लिए जाना, अपने शोहर के हवाले से कोई सिफारिश करवाती है, शोहर को उसकी इत्तला भी नहीं। यहाँ नाउज़ु बिल्लाह ये हो रहा है, आप तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, उसी रब से बात कर रहे हैं। यहाँ ये होना चाहिए था कि इस कहानी को असल ये होना चाहिए था कि ये बीवी अपने शोहर के पास पहुंची बहुत अदब से और कहा कि वाकई मियाँ साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपने ऐसा समझा कि मुझे पैसे नहीं देने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, मैं वाकई इसकी मुस्तहक तो नहीं हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, इनका ख्याल कर लीजिए, ये तो आपके बड़े चहेते हैं ना, आपके अब्बा जान इनका आप बड़ा अदब करते हैं, इनसे आपको बड़ी मोहब्बत है, ये आपकी बहन आपकी बड़ी करीब है, इनका लिहाज कर लीजिए, वो आपके सामने मौजूद है, अल्लाह से छुपी हुई है क्या ये बात है, अल्लाह को पता नहीं कि किससे बात हो रही है, इतनी मोटी बात किसी की अकल में ना आए और उसके बारे में वो आर्टिकल लिख के लोगों को भेज दे, सिवाय मातम करने के और कोई बात नहीं की जा सकती। कहानियां बनाकर, यानी झूठ पर कहानियां बनाना, एक ऐसी कहानी बनाना जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं, लोगों को गुमराह करने के अलावा और क्या है, बहुत दयानतदारी से होगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इल्म की कमी है और बिल्कुल जो है वो अंदाज नहीं मालूम है कि बात कैसे की जाती है, तो क्या कहा जा सकता है ऐसे लोगों को, अल्लाह हिदायत दे। लेकिन ये कहिए कि भाई हमारे नजदीक हम इसको सही नहीं समझना कीजिए, फिर ये भी बताइए कि आपके पीछे सपोर्ट करने में 1400 सालों में कौन कौन से उलमा मौजूद हैं। आप कहेंगे इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, बड़े इमाम है हम सबके सर आंखों पर, लेकिन उनसे बड़े इमाम 700 साल पहले तक उनसे सारे इत्तेफाक करते रहे, उनके बाद के बहुत से इमाम इत्तेफाक करते रहे, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम मोहम्मद वगैरह, इमाम अबू यूसुफ वगैरह के यहाँ ये चीज नापसंद थी, नाजायज नहीं नापसंद, के दुनिया से जाने के बाद किसी से वसीला किया जाए, लेकिन उसकी उन्होंने हिकमतें जो बताई वो इसलिए कि जब लोग ये समझने लगे या ऐसा होने लगे कि हम अल्लाह पर कोई हक लगा रहे, तो कहते कि भाई अल्लाह पर कोई हक ना जिताए, ये ना कहे कि अल्लाह पे हम बेहक के नबी, नबी के हक की वजह से इसको कबूल कर, किसी का कोई हक नहीं है अल्लाह पर, ये वो कहते हैं इस तौर पर ये बात नापसंदीदा महसूस होती है, बस हराम उन्होंने नहीं लिखा ना कहा, पर नापसंद उनको नापसंद है, आप ना कीजिए, आपको भी नापसंद हो, आप ज्यादा अच्छा समझते हो कि डायरेक्ट अल्लाह से करिए, किसने कहा कि वसीला करना फर्ज है, किसी एक इमाम ने भी नहीं कहा, ना कोई करता है, लेकिन किसी चीज का जायज होना और नाजायज होना उसको इस वजह से कि आपको नापसंद है और पूरी उम्मत के तमाम लोगों को भले पसंद हुआ करे, आप उसको लोगों पर थोपेंगे तो जुल्म नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे, उसको शिर्क और बिदात से मिला के आप कितना बड़ा अजाब अपने लिए ले रहे हैं। कहिए कि इन सारे इमामों ने जिन्होंने इसको जायज करार दिया वो सब गलत है और सब मुशरिक है, सब ने गुनाह का रास्ता इख्तियार किया, ये बात कहिए तो हम मानते हैं कि आप दयानतदार हैं, नहीं कहेंगे आप नहीं कह सकते, कहिए ताकि अल्लाह सुबहान व तआला की लानत आप पर पड़े, अजाब पड़े, इसलिए कि मन आदली वली जन फकत आज़ंतुहु बिल हर्ब, कि जो शख्स मेरे वली से दुश्मनी करेगा तो उससे लिए उसके लिए मैं उसको चैलेंज करता हूँ, आए मुझसे लड़े जंग के लिए चैलेंज करता हूँ, अल्लाह फरमाते हैं इसकी हिम्मत है तो करके दिखाइए, वाकईतन ऐसा कोई दावा लाइव आकर किसी प्रोग्राम में वर अपने फेसबुक पेज पे कहिए कि मैं कहता हूँ हर वो इमाम, कहिए ये बात अपनी जबान से कि जिस जिसने इसको ऐसा किया है, जो जो वसीले को मुर्दों से दुनिया से जाने वालों से जायज करार देता है वो ऐसा ऐसा है, कह के दिखाइए, जब ये बात आप कहेंगे तो अल्लाह के यहाँ आपसे फिर इस पर सवाल होगा तो फिर पूछा जाएगा, बहरहाल ये नहीं कहेंगे आप, जो मौजूदा लोग हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए, परेशान करने के लिए, और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह की इस बात को पूरी तरीके से लेंगे भी नहीं, इमाम साहब फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसा करे, ये इख्तिलाफी मसला है, जो शख्स किसी मुर्दे से वसीले करने वाले को गुमराह और गलत करार दे वो ज्यादा सख्त सजा का मुस्तहिक है, इसलिए कि ये इख्तिलाफी मसला है, उन्होंने ये कहा, एक फिकी मसला है, इसका अकीदे से क्या ताल्लुक है, इसको हराम हलाल कैसे बना दिया आपने, इसकी बुनियाद पर आपने जंगो जदल कैसे कह दिया, आपको नहीं पसंद है न कीजिए, तो इसलिए ये कहानियां बना के नई नई तरीके से लोगों को गुमराह करना ये खतरनाक बात है, या कही कि हम नहीं करते ना कीजिए, देवबंदी मकतब फिक्र में नहीं किया जाता अमूमन, जमात इस्लामी वाले अक्सर नहीं करते हैं, तबलीगी जमात वाले अक्सर नहीं करते हैं, बरेलवी मकतब फिक्र में अक्सर किया जाता है, जायज है, कोई करे कोई ना करे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कभी आपने सुना कि कोई कहे कि नहीं करते जो वो गलत है, ऐसा कोई नहीं कहता, ये बीमारी आपको लाहक है कम इल्मी की वजह से कि जो करता है वो मुशरिक है या गलत है या गलत काम करता है, और उसमें आप कहानियां बनाते अपना वक्त जाया करते हैं और उम्मत को गुमराह करने की कोशिश तो नहीं करते, लेकिन आप ये समझते हैं कि आप ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन खतरा होता है कि कहीं ऐसा मामला ना हो कि जो कुरान या दीन के बारे में कोई बात अपनी राय से कहे और वो ठीक भी हो तब भी उसको अपना ठिकाना जहन्नम में बनाना चाहिए। अल्लाह हमें महफूज रखे हर किस्म की वईद से, अल्लाह आप पर भी करम फरमाए, हम पर भी करम फरमाए, बात समझने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत ने सारी मिल के गलती नहीं की है, उम्मत की अक्सरियत मुजतमे नहीं होती। इमाम इब्न तैमिया की इस राय को उम्मत ने उस वक्त भी रद्द किया था, आज भी रद्द किया हुआ है। उनके बहुत सारे शुज़ूज़ हैं, बहुत सारे तफर्रुदात हैं जिनको उम्मत ने कबूल नहीं किया, उनकी जलालत शान के बावजूद, उनके इल्मी बहुत बड़ी होने के बावजूद, उनसे बड़े इमाम मौजूद हैं, सबसे बड़े इमाम नहीं थे, उनसे बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े लोग इमाम असातिज़ा उनके और उम्मत में लोग मौजूद रहे, उनके बाद भी बहुत बड़े लोग मौजूद रहे, उन सब ने उससे इत्तेफाक किया। मैंने तो आपको उनके नाम की लिस्ट बताई थी, कितने बड़े बड़े लोग, इमाम शाफी खुद करते तवस्सुल, इमाम अहमद इब्न हंबल खुद करते तवस्सुल, इनके मुकाबले में आपको किसी और तीसरे आदमी की जरूरत है? इमाम नवोवी करते हैं और कहते हैं ऐसा करना चाहिए, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी करते हैं, बुखारी शरीफ के सबसे बड़े शारह फतुल बारी के लिखने वाले, तो इमाम शौकानी जो खुद सलफी हजरात जिनको बहुत बड़ा इमाम समझते हैं, उनको फॉलो करते हैं, वो खुद भी गैर मुकल्लिद थे, उनकी राय भी यही है कि बिल्कुल जायज है। एक लिस्ट है उलमा की, आप गिनती के तीन चार आलम भी नहीं बता सकते कि जिसको नाजायज करार देते हैं माजी के। मौजूदा जमाने में आपको शेख अल्बानी की बात माननी है, मानी, आप शेख इब्न बाज और शेख उसैमीन की राय पर अमल करते हैं, जितने सलफी स्कॉलर्स की राय पर कीजिए, लेकिन उसको उम्मत का ऐसा मसला ना बना दीजिए कि 1400 सालों में सबने यही समझा था, या आपने समझा आप समझिए आप कीजिए, इसकी बुनियाद पर उम्मत में फितना फसाद ना क्रिएट कीजिए। अल्लाह हम सबको समझने और हिदायत करने की तौफीक अता फरमाए।